देता है। लेकिन हम सब अपने आप को बेच रहे हैं। कोई अपनी ताकत बेचता है, कोई अपनी कुव्वत बेचता है, कोई जहानत, कोई सलाहियत को बेचता है, कोई अपना वक्त बेचता है, कोई अपना हुनर बेचता है। गोया कि ये दुनिया मेहनत, अमल और कोशिश की दौड़ का मैदान है। हर इंसान अपने मुफाद के लिए अपनी हिम्मत से भड़कर दौड़ धूप करता है। मगर बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी पूरी कोशिश और मेहनत के बावजूद घाटे में रहते हैं। इस दुनिया के लिए खुद को बेचते हैं। अमल भी नहीं मिला, अमल किया न न फायदा मिला, नुकसान भी रहा। तो लगत अल्लज़ीना दल्ल सायहुम फिल हयात दुनिया। यकीन करें, इतनी उदास कर देने वाली ये 10 आयतें हैं ना, कि दिल करता है कि इंसान दीवार को सर मार के तो फूट फूट के रोए। क्या जिंदगी की कोशिशें हैं। और कभी आप किसी के जवान बच्चे की मौत की खबर सुने, फिर इन आयतों को सोचें, किधर गया स्टैंडर्ड, कहाँ गया कैरियर, कहाँ गया लाइफ का सारा सा। बच्चियों की शादी की फिक्र होती है, शादी 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 शादी, साल बाद मियां फौत हो जाता है, साल बाद कुछ खुद को हो जाता है, जान चली जाती है। मैं खुद जानती हूँ, हमारे रिश्तेदारों में शादी हुई थी और शादी के शायद दूसरे साल उस लड़की को कैंसर डायग्नोज हुआ, और शायद चंद महीने की बीमारी के बाद 1.5 साल की बच्ची छोड़ के वो औरत दुनिया से चली गई। मैं सोचती हूँ इसकी माँ ने, और ये वो दौर है जब माएँ शायद 12 साल की बच्ची का दहेज जमा करना शुरू करती थी। इतनी मेहनतों से कर 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 के शादी की, 25 साल 1.5 में फारिग दुनिया से चली गई। अब शायद उसको दुनिया से गए हुए भी कई साल हो गए। अल्लाह उनकी मगफरत करे। ये है दुनिया जिसने मुझे रुलाया, ये है वो दुनिया जिसके पीछे मैं खपी, ये है वो दुनिया जिसकी वजह से मैं इस किताब से दूर हूं। जहां किताब से दूर, नमाज से दूर, अल्लाह के दीन के तकाजों को निभाने से दूर, इस आयत को याद कर लें, अल्लज़ीना दल्ल सायुम। अब देखिए, दल्ला का लफ्ज भी तो है, मैं ना भटक गई इनकी कोशिशें, कोशिश है गलत जगह पे है। बादाम तोड़ते हैं ना हथौड़ी के साथ, अगर तो हथौड़ी बादाम पे लगेगी तो अंदर से गिरी निकलेगी, और हल्का सा निशाना चूकता है ना तो वही हथौड़ी आपकी उंगली पे लगेगी और खून का फवारा निकलेगा, चीखें निकलेंगी। ये है आज, आप इसको लिख लें। आखरत के लिए काम करना, आखरत ओरिएंटेड जिंदगी बादाम के ऊपर हथौड़ी है। इंशाल्लाह उसका फल खाएंगे आगे जाके। और जो दुनिया के लिए ना, वो अपनी उंगलियों को फोड़ने का काम है। ये वो लोग हैं कि जिनको आखरत मतलूब ही नहीं। सारी तगड़ो, सारी सोच विचार दुनिया 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 कमाने के लिए, ना तो आखरत के लिए कभी प्लानिंग की, कोई मनसूबाबंदी नहीं, और ना मेहनत की, बस ब्राए नाम और मौरूसी मुसलमान का भरम रखने के लिए कभी नेक काम कर लिया, कभी नमाज भी पढ़ ली, कभी रोजा भी रख लिया। मगर अल्लाह को असल में इनसे क्या मकसूद है, क्या मतलूब है, इसके बारे में कभी संजीदगी से सोचने की जहमत भी गवारा नहीं की। फिर ऐसे लोगों को अल्लाह इनकी मेहनत का सिला अपनी मर्जी से, इनकी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से दुनिया में दे देता है। आखिरत में कुछ नहीं है। ये मजमून तो अभी पीछे पढ़ चुके हैं आप, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 18 और 19 में क्या पढ़ा था, किसी को याद है? मन का नयोरी दुला जिलता अज्जलना लहू फी हमा नशा। जो इस जल्दी मिलने वाली दुनिया का तलबगार होता है, तो हम इसको जल्दी दे देते हैं वो कुछ जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं हम मुकर्रर करते हैं। लेकिन आखरत में वो जहन्नुम में दाखिल होगा मलामत ज़दा और धुतकारा हुआ होकर। और इसके बरक्स, वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सायहा वहुवा मुमिनुन फौलाइका काना सायहुम मशकूरा। जिसने आखरत की नंबर एक तलब की, फिर कोशिश की, फिर कोशिश भी उतनी जितनी आखरत के लिए डिजर्व थी, थोड़ी कोशिश करके छोड़ दें और बदमजा खाना पकेगा, आधा पक्का आधा कच्चा कौन खाए? क्या आज हमारी कोशिशें आधी पक्की कच्ची नहीं है? और शर्त फिर मोमिन की भी है, फिर अल्लाह ऐसे लोगों की कोशिशों की कदर करेगा। तो आज खुद से पूछिए, क्या मैं तालिबे दुनिया हूं या तालिबे आखरत? देखिए, आप यहां तालिबे इल्म बन के बैठी है ना, तो आप नीचे लिखे तालिबे इल्म, तालिबे अदब, तालिबे दुनिया, तालिबे आखरत, तालिबे शोहरत, सारी मतलूब चीजों के नाम लिख लें इधर, फिर खुद से पूछें कहां तक कामयाब हो। अब सारी इन बातों को सुनकर जहन में आता है, अच्छा फिर क्या दुनिया के लिए काम ना करें, फिर हमारी जरूरतें कैसी पूरी हों। तो याद रखिएगा एक अल्लाह का असूल कि दुनिया में रहते हुए जरूरियात जिंदगी जो है ना, वो सब की पूरी हो रही है, नेक की भी और बद की भी। इसी सूरत बनी इसराइल की आयत 20 में हम पढ़ चुके, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिनताए रब्बी का, हम सब की मदद कर रहे हैं, इनकी भी और उनकी भी, दुनिया के तालिबों की भी आखरत के भी। हाँ आपके रब की अता से इनको मिलता है और आपके रब की अता को कोई रोक नहीं सकता, वो रुकी भी नहीं है। तो खाते पीते तो सब है। देखिए वो लोग बेचारे जो जॉबलेस हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास, वो भी तो खा के ही सोते हैं। कोई तर्स खा के उनको एक बर्गर दे देता है ना, खा के ही सोते हैं ना, भूखे तो नहीं रहते ना। वो तो अल्लाह सबको दे देता, अल्लाह के हुक्मों पे चलता है, क्या अल्लाह उसको नहीं देगा। सूरत अल्लाह का आयत 3 में आता है, वह यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, वहां से अल्लाह रिस्क देता है जहां से गुमान भी नहीं होता। तो कर अल्लाह ये करे, दुनिया की फिक्रों से बेनियाज एक डीप ब्रेथ ले, रिलैक्स, मेरे सारे फिक्र मेरे रब के हाथ में, इनसे बेनियाज होकर आखरत को अपना मतलूब और मकसूद बना लें। अपने साथ ही साथ अपने बच्चों का भी नाम लिख लें, क्योंकि अब हमें अपनी तो इतनी को फिक्र नहीं रहती इस उम्र में आकर, बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो उनकी फिक्र सताती है, बच्चों के रिश्ते, बच्चियों के रिश्ते, बेटों की जॉब, घर, मियाँ, फुलां 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 फुलां, सारे फिक्र उतार के फेंक दीजिए, हत्ता कि अपने प्यारों की मौत का फिक्र भी उतार दें। हम तो जान पे ले लेते हैं ना, कोई किसी के मरने का सोच ले या सुन ले, सब रिलैक्स फील करते थे। एक बच्चा था छोटा सा, हारिस शायद उसका नाम था, तो गजवे बदर के लिए माँ से जिद करके गया कि मेरी अम्मी मुझे जाने दो। 18 साल 17 साल का बिल्कुल जवान बच्चा था, माँ बेवा भी थी, अकेली भी थी। कहने लगा अम्मा मुझे जाने दो, अगर मैं जिंदा बच के आ गया तो तुझे मिल लूंगा, नहीं तो जन्नत में तेरा इंतजार करूंगा। और वो चला गया बच्चा। आप पता है कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ, अभी जंग भी नहीं शुरू हुई तो मुसलमान अपने तीर ठीक कर रहे थे, तो गलती से एक तीर चला और उस बच्चे को लगा, वो मर गया। अब उस दौर में इतनी जल्दी जल्दी खबरें नहीं आती थी पीछे से, जंग हुई पूरी खत्म हुई, मुसलमानों की फतह की शोहरत फैल गई, सब लोग वापस आ रहे हैं इस्तकबाल के लिए कि मुसलमान फातह बन के आ रहे हैं, तो वो माँ भी खुशी खुशी जा रही है कि मेरा बच्चा भी आया होगा। नाम में मुझे खदशा, या तो हारिस है या इब्ने हारिस है, यानी कुछ ऐसे ही था। इस पर पूरा एक सेशन दिया था मैंने एक दफा क्लास में। खैर जब वो माँ आई तो सारे आगे, उसका बच्चा ही नहीं है, मेरा बच्चा किधर है। दिल में ख्याल आया तो दिल में खुश क्या होती है कि चलो कोई बात नहीं, नहीं आया तो शहीद तो हो गया ना, वहां मिल जाएगा। इतने में किसी एक ऐसे शख्स ने जो उस मौके पे वहां मौजूद था, उसने उस औरत को बता दिया कि अम्मा तेरा बच्चा तो ना तो वो शहीद हुआ है और ना वो वापस आया, वो तो मुसलमानों के तीर से लग के मर गया। अब तो इस माँ का जो गम था, अल्लाह के नबी के पास जाती है कि अल्लाह के नबी मेरे साथ क्या हुआ, अल्लाह ने मेरे बच्चे को कबूल नहीं किया। यदि आप सोचिए वो कैसी माएं थी, हम कभी सोच भी सकते हैं ऐसा, नहीं सोचते हम। तो याद रखिए आखरत को मतलूब बनाए, ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसी होती है। ये हमने खुद को दुनिया के गम लगाकर दुनिया के काम अपने हाथ लिए हुए हैं, यकीन कीजिए हमारे तो हाथ ही बड़े छोटे हैं, कितने को काम करेंगे। आपका बच्चा अपना मुंह धो सकता है, अब खुद खाना खाते हुए बच्चों को कभी देखा करें, वो तो फिर ऐसे ही खाएगा, एक मुंह में चम्मच होगी तो आधे चावल बाहर टेबल पे गिरे होंगे। हम यही कर रहे हैं वल्लाही, आप अपने छोटे बच्चे को खाते पीते कपड़े पहनते देखा करें और उल्टी कमीज पहन रहे होते हैं, बाजू बाजू की जगह टांग अटकाई होती है, टांग की जगह बाजू डाला होता है। अल्लाह की निगाह में ये जो मैं और आप अपने कामों के लिए बहुत अकलमंदियां करते हैं ना, ये बिल्कुल यही बच्चों वाली हरकतें करते हैं। ऊपर से शायद अगर फरिश्तों में कोई हिस्से मजाक होती तो हंसते होते, देखो देखो कैसे काम कर रहे हैं। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह। गहरा सांस लेकर अल्लाह के हवाले सारे काम करके कहे कि अल्लाह मुझे इस दुनिया के लिए ना जाया करना। घाटे का सौदा है, मेहनत भी गई, नुकसान भी गई, वो नुकसान भी हुआ, यानी सब कुछ दुनिया में खो गया। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना, समझते क्या रहे हम कितने कामयाब है, ये एक दूसरा धोखा है। देखिए वो कहते हैं ना कि एहसास से जिया जो होता है ना, वो जिया से बड़ी दौलत है। वो एक शेर भी है ना कि कौम के दिल से एहसास से जिया जाता रहा। मिसाल है कि अगर आपकी टैब है तो उसमें से पानी का कतरा कतरा गिरता है, ये भी आपका नुकसान है, आपका बिल ज्यादा आएगा, आपका सिंक खराब हो जाएगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा उस पानी का, ये भी एक नुकसान है। लेकिन जिस दिन आप इस फिक्र से आजाद हो गए, गिरता है तो गिरे, ये एहसास से जिया। जब कौमों में से एहसास से जिया जाता है तो वो कौमें तबाह हो जाती हैं। यानी आप ये कह लीजिए कि हमारा बहुत कुछ जाया हो रहा है, ये भी नुकसान है, लेकिन उस जाया होने का एहसास भी जाया हो गया, ये बड़ा नुकसान है। आज माएं बड़े भोलपन से सवाल करती हैं, चोर क्या करें, चले जाते हैं बच्चे नमाज पढ़ने जुम्मे की, कहती हैं तो चले जाते हैं, रात को आके 5 नमाजें भी पढ़ ही लेते हैं। ये समझ ही नहीं आता कि अल्लाह को हमें हमारे बच्चे कैसे चाहिए, क्योंकि हमने भी नहीं वैसे चाहे। आज जाके अल्लाह से पूछिए कि अल्लाह तू मुझे कैसा चाहता है देखना, मेरे बच्चों को कैसा देखना चाहता है, मेरे शौहर को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरे माँ बाप को, मेरे ससुराल को, अल्लाह जी आप किस तरह का देखना चाहते हैं। फिर वापस नजर दौड़ाइए कि क्या हम सब ऐसे हैं, हाथों में सिगरेट के कश लेते हुए, जिस्म का एक एक अंग दिखता हुआ, और इस तरह की जिंदगी बसर करते कि कभी कोई ईद के ईद फजर की नमाज पे आंख खुल गई तो नमाज पढ़ ली, बड़े खुश हैं कि देखो फजर तो आज बड़ी थी ना मैंने। किधर है हम? देखिए ना, तो कुछ सुनते हो कि ऐसे नहीं लगता कि मेरे देखने का मेयार कुछ और है और अल्लाह के कुछ और है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे इस वक्त मुझे पीछे की दीवार दिख रही है, आप सबको ये मेरे पीछे की दिख रही है, हमारा नुक्ता नजर ही फर्क है इस वक्त, फर्क है ना। बिल्कुल इस तरह आज हमारा नुक्ता नजर अल्लाह के नुक्ता नजर से मुख्तलिफ है। इस दर्द को अगर कोई महसूस कर ले तो शायद उसको फायदा हो जाए। मिलेंगी आपको सब दौलतें, मिलेंगी सब कुछ मिलेगा। आप पीछे की वॉल पे जो कुछ है वो आपको नहीं दिख रहा तो केस करता कि आपको ये नहीं मिलेगा। जो ही आप इस क्लासरूम से उठेंगे फिर आपको मेरे से ज्यादा अच्छा दिखेगा, आप तो उससे करीब है, मैं तो दूर हूं। एक दफा आप दुनिया को पीछे की दीवार बना के तो देखें, आप आखिरत को सामने बना लें। जो ही पलटेंगे तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं उनको जो दूंगा वो आखिरी आयतों में आ रही है बात, तो लिहाजा इसकी फिक्र करनी है। ये तो था इस आयत का एक माना जो आम मानी है हर एक के लिए, दुनिया की दौड़ और इस पूरी सूरत के थीम के साथ यही है। लेकिन इसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी है जो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, वो क्या है? अन्नम यक्सबून अन्नम यक्सिनून सोना। तो इसका ताल्लुक उस लफ्ज से है जो मैंने आपको पिछली आयत के शुरू में लिखाया था कि यहां शिर्क लिख लें, कहा था ना, तो इस आयत के एंड पे लिख लीजिए बिदत। ये उन मुसलमानों की उन नेकियों का जिक्र है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मुबारक से हटकर करते हैं, करते वो अपनी मर्जी के काम है, बुजुर्गों की बातें, कहावतें, रवायतें, नानी करती थी, दादी करती थी, खानदान में यही हुआ, ससुराल में यही होता था, और सोचते क्या? अन्नहुम युहसिनून सुनअ। इस आयत पे मुफस्सरीन ने बहुत बात की है कि हर वो अमर, हर वो काम जिस पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के नाम की मोहर नहीं होगी, कयामत के दिन वो रद्द कर दिया जाएगा, रिजेक्टेड। आप देखिए कि असली और नकली मोहर कौन सी होती है। असली वो जो कंपनी ने लगाई, नकली वो जो उसको देखकर दूसरों ने लगा ली। असली और नकली नोट का फर्क क्या है? क्या कागज का फर्क है? नहीं, आप नकली नोट प्लास्टिक का भी बना ले, असल फर्क मोहर का है। जिस अमल पे अल्लाह और उसके रसूल की मोहर मिल गई, बिस्मिल्लाह, और जिस पे मोहर नहीं मिली तो हम इसको नहीं ले पाएंगे, ये हमारे काम की चीज नहीं है। तो कोई काम करें अब ये, और याद रखिए कि जब इंसान नॉर्मल जिंदगी गुजारता है ना सुन्नतों पे, तो वो सारे काम छोटे छोटे सही सुन्नत पे करता रहता है। लेकिन जब जिंदगी में दौड़ धूप दुनिया के लिए, जो पहला मनी आपको बताया, तो फिर उन लोगों से बहुत तवक्को होती है कि जब नेकी करने का ख्याल आया तो एक महफिल सजा ली, 100 लोगों का खाना ऑर्डर कर दिया, 2-4 हज़ार डाल लगा के कहते हैं माशाल्लाह काफी नेकियां कर ली हैं, दैट्स इट, खत्म हो गया मामला। जो लोग अपनी दौड़ धूप सिर्फ दुनिया के लिए रखते हैं ना, तो दीन को वो जैसे आटे में नमक के लिए कभी ना कभी सेलिब्रेट कर लेते हैं, किसी एक रात को जाग लेंगे बगैर सोचे समझे कि इस मौके पे जागना है या बाकी रातों में भी जागना है, फर्ज नहीं पड़ेंगे लेकिन रातों को जाग लेंगे, नबी की बात नहीं मानेंगे मिलाद मना लेंगे, अपनी मर्जी की चीजें पढ़ेंगे, हदीस की दुआएं याद नहीं होंगी, अपनी पसंद के दुरूद कितने उनकी जुबानों पे होंगे, तो वो सारे लोग जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। और ये बहुत अहम नुक्ता है कुरान पाक का, एक अहम मोड़ है कि जहां पे अल्लाह सुबहाना तआला ने हम सबको ये बता दिया कि कोशिशें तो कर रहे हो, ये भी तो देखो ठीक की हैं कि नहीं। देखिए इसको इस तरह से समझिए कि कोई मैथमेटिक्स का पेपर ले और उसमें जाके सब केमिस्ट्री की बातें याद करके लिख दे, नंबर मिलेंगे? इंग्लिश का पेपर हो उसमें जाके फारसी की बातें लिखा है, कोई और आप पेपर देने जा रहे हैं एफए का और उसमें आप मैट्रिक की बातें लिखा है, दुनिया की भी इसकी मिसालें मौजूद हैं, लोग तो एकदम रिजेक्ट करते हैं। इवन आपको अगर कभी वास्ता पड़ा हो कभी वीजे और इमिग्रेशन और इसमें एक छोटी सी गलती पर रिजेक्ट, ऐसे ही ना चाहती भी बातें होती हैं, रह जाती बातें, क्यों? क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो क्या फिर अल्लाह कयामत के दिन सब कुछ ले आए? आप कहते हैं फलां कंपनी तो इतनी क्वालिटी कॉन्शियस है कि जरा सी मोहर टेढ़ी हो जाए उस कपड़े को वो आउटलेट्स में डाल देते हैं, कहते हैं ये हम नहीं बेचेंगे अपने स्टोर्स पे, हमारा स्टैंडर्ड ये नहीं है। ये जो आउटलेट्स पे माल होता है वो यही कुछ होता है ना, तो क्या अल्लाह ताला की जात हमारे हर अमल को कबूल कर ले? अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ी ना सुन्नत से कोई शगफ था और इन सारी चीजों पे आ गए। तो जरूरत है इस बात की कि इल्म हासिल किया जाए। फर्क कैसे पता चलता है कि क्या ठीक है क्या गलत है? इल्म से पता चलता है, इल्म ही तो बताएगा। आज आप देखिए जितने साथी इन चीजों में पढ़े हैं, हो सकता है सुनते वक्त आपके जहन में कुछ लोग हों तो उनके लिए बदगुमान ना हो, ना उन पर तनकीद करें, हाँ उनको इल्म से जोड़ दें। जितना वो इल्म से जुड़ते जाएंगे उतना उनकी जिंदगियों में ये सारी की सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी। हदीस में आता है कि यानी खुलासा बता देता हूँ बता देती हूँ कि हर वो अमल जिस पे अल्लाह के रसूल की मोहर नहीं होगी या वो सुन्नत से साबित नहीं होगा तो वो रिजेक्टेड है, मरदूद है। अल्लाह ताला उस अमल को कयामत के दिन रिजेक्ट कर देंगे जो सुन्नत के खिलाफ होगा, और इसको अरबी जुबान में मुहदस कहते हैं। देखिए सुन्नत इसका ऑपोजिट मुहदस, सुन्नत का मानी पुराना, सन्ना या सुन्नो से जो सन फुला सन 2004 ये भी इसी से ओल्ड के मानों में होता है। तो सुन्नत के नबी सल्लम का तरीका पुरानी चीजें, इसी को सलफ भी कहते हैं। कभी आपने लफ सुना होगा सलफ सालेहीन असलाफ, कुछ लोग आज भी खुद को सलफी कहलवाते हैं, ये सारी चीजें इसी रूट से। मुहदस के हदसा से, इसी से लफ्ज हदीस भी है, हदीस के बात, तो बात क्या नहीं, जो मेरी बात है वो नई बात है, अल्लाह के नबी की बात पुरानी बात है। यानी आप कह लीजिए कि अल्लाह के दीन में किसी नई बात की गुंजाइश ही नहीं है, जो बातें नबी से कहलवा दी वही ठीक है। और आज लोगों का एक बहुत बड़ा इल्जाम भी है, क्या चाहे वो मोहब्बत नहीं करते हैं, कि नबी ने तो हदीसें जो बयान की थी वो आम लोग फायदा नहीं उठा पाते, समझ ही नहीं आता क्या ठीक है क्या गलत, तो हाँ आयमाए कराम ने उनको बाद में सॉर्ट आउट करके आसान कर दिया। तो क्या नऊज़ बिल्ला अल्लाह के नबी को बात नहीं करनी आती थी, या आप लोगों को स्कैटर्ड थॉट्स दे करके, और इन लोगों से पहले क्या जिन लोगों ने काम किए क्या अल्लाह के नबी की बात ना मान सके? ये सब प्रोपेगंडा है। इस पे आपको पूरी बुक हम पढ़ते हैं, एक अल्लाह के हुक्म से यहाँ दुरूद शरीफ के मसाइल और इत्तबाए सुन्नत के मसाइल तो आप पढ़ चुके हैं, बल्कि उसके आखिरी टॉपिक में आपने देखा होगा कि बिदत का बयान भी है। उर्दू में इसको हम बिदत कहते हैं, अरबी में भी बिदत कहते हैं, लेकिन यहाँ बस इतना ही काफी है कि पहले चेक कर लें कोई काम करने से पहले कि ये मसनून है कि नहीं। हम देखिए जो किताबें छपवाते हैं रमजान में फलां के साले सवाब के लिए, फलां के लिए रमजान में, इतना मारूफ ट्रेंड है आजकल पाकिस्तान में। अभी चंद दिन पहले भी किसी से बात हो रही थी कि वो कहती है हम लाखों की तादाद में किताबें छपवाते हैं रमजान में, लेकिन उनकी छपी हुई बुक्स का कुछ सामने आई तो उसमें बहुत सारी गैर मारूफ बातें थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब उनसे रब्ता किया गया, अब उन्होंने मीटिंग की और वो कहते हैं हमें अभी से बता दें कि ये ठीक है कि नहीं, अगले साल हम नहीं करेंगे। और इस साल उन्होंने छपवाई ही नहीं क्योंकि उनको डाउट आ गया कि जो किताबें हम सवाब की नीयत से छपवाते हैं उसमें तो कई नॉन ऑथेंटिक चीजें हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन रुसवा ना करें। ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह कहते हैं उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम वलिक़ाइही, अल्लाह की आयतों का इनकार है तो क़यामत के दिन क्या होगा, फला नुक़ीम लहुम यौमल क़यामति वज़ना। एक हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन एक मोटे ताज़े जहन्नमी को लाया जाएगा और उसको तोला जाएगा और उसका वजन मच्छर के पर का सा भी नहीं होगा। फिर उसके बाद आपने इसी आयत की तिलावत की, ये सही बुखारी में किताब व तफसीर में सूरह कहफ की तफसीर में आप पढ़ सकते हैं खुद भी। मोटे मोटे लोग भी आएंगे, जैसे दुनिया में देखिए जो दुनिया के डिटेक्टर्स हैं वो हमारा वेट चेक करते हैं ना, क्यामत के दिन नीयतें भी उसमें डिटेक्ट हो जाएंगी, इरादे, सोच, तरीक़ाकार। तो कोई फायदा नहीं होगा उससे, चाहे कितना बड़ा इंसान काम कर ले। तीन तरह से इंसान तो ले जाएंगे, उसके नामे अमाल, इंसान खुद, और वो नेकियां खुद मुजस्म बनाई जाएंगी, तो जहन्नमी का कोई वजन नहीं होगा। अल्लाह हिदायत दे हम सबको भी। वजह वही है कि जालिक जज़ाउम जहन्नम बिमा कफर वत्तखज़ु आयाती व रुसुली हुज़ुबा। अब इसके बरस, अब आप जैसे लोगों की बात है, आयत 107, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। इसके बरक्स वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, इनकी मेहमानी के लिए फिरदौस के बागात होंगे। ये है वो लोग जो मतलूब है, जिन्होंने ईमान के तकाजे भरपूर तौर पर पूरे किए, नेक आमाल भी किए, सुन्नत के मुताबिक भी किए और उसको फिर निभाया भी, उस पर अमल भी किया। अल्लाह कहते ठंडी ठंडी छांव वाले बागात होंगे। आज हम तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्या हम इस पूरी दुनिया की वसतों का अंदाजा लगा सके आज तक? इसका नहीं लगा सके तो जन्नत की वसतें किसके दिमाग में आ सकती हैं? आज इतनी गैलेक्सीज, इतनी कहकशाएं इस दुनिया में, कितने जहान अभी मौजूद हैं। जैसे आज हम जमीन से सितारों को देखते हैं, यानी ऊपर देखना पड़ेगा। और यहां लफ्ज नुजुल आया, नुजुल कहते हैं पहला खाना जो मेहमान को ऑफर किया जाए। अल्लाह अकबर, नुजुल फरमाना, नाजिल होना, मंजिला, मंजिलत, ये वही लफ्ज है। और पहला खाना आप सबको पता है किसको कैसा खिलाया जाता है, हुक्म भी है कि अपने आम खाने से अच्छा खाना खिलाओ। तीसरे दिन के बाद मेहमान को अपने खाने में शामिल कर लो। पहले 3 दिन ज़ियाफ़त के होते हैं, उसके बाद फिर तकलीफ होगी अगर आप उसको कहें कि हमारे लिए इख्तमाम करें। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि वह जन्नत का आला हिस्सा है और वहीं से जन्नत की नहरें फूटती हैं। ये बुखारी की रिवायत है। इसी तरह रिवायत में यह भी आता है कि जन्नतुल फिरदौस की छत रहमान का अर्श है। गोया के रब इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना। हमें कहां अल्लाह के कुर्ब की जरूरत थी जो वहां जाके खुश हो, हाय अल्लाह इतनी करीब होगा, नहीं 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 फिर हमें बहुत वॉच करेगा, दूर ही रो इनसे, अच्छा है। ऐसे ये सामने हुए तो फिर हम रिलैक्स फील नहीं करेंगे। आज दुनिया में 4 लोग कोई ऐसे हो ना कि जो जरा हमारे ख्याल में थोड़ा ज्यादा ही हमसे ज्यादा जानते हैं या हमारी चीजों को नोट करते हैं तो हम उनसे मिसफिट फील करते हैं। उनकी महफिल में हम, उनकी मौजूदगी में हम महफिल में कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो क्या ये लोग वहां अल्लाह के करीब नहीं रहना चाहेंगे? रहना चाहेंगे। इनकी तो ख्वाहिश ही ये थी कि अल्लाह हमें अपने पास रखना। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जन्नत में ये जो कुछ होगा, इतनी नेमतें और इतनी नेमतों के बागात, इनको पाने के बाद आपके दिल में क्या आता है? फन फ्लेक्स आता है, लग्जरियस लाइफ। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, हाँ ये जन्नत में जाकर बोर नहीं हो जाएंगे? जहन में क्वेश्चन आता है कभी आपके? बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि हाँ ये फिर हम जन्नत में बोर नहीं होंगे। तो इसका जवाब ये पूछें कि क्या इस दुनिया से आप बोर हो गए? क्या फौत ही हो जाना चाहिए? इतने साल तो जी लिया मैंने, कोई इस दुनिया जिसमें दुख, बीमारियां, तकलीफें, गम, परेशानियां, इससे आज तक बोर नहीं हुआ, फेडअप नहीं हुआ, तो जन्नत से कैसे बोर होगा? और ये तो फिर दुनिया है ना, आखिरत में जो जन्नत होगी वो कितनी हसीन होगी। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं आयत 108 में, खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले उसमें। दुनिया में आप किसी भी फन प्लेक्स में जाते हैं, किसी ट्रिप पे जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या करते हैं अपने हस्बैंड से, या जो आपको ऑफर दे रहा होता है, पैकेज कितने दिन का है, कितने दिन जाएंगे, अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, इतनी छुट्टियां ले सकते हैं नहीं। और जो ही आप किसी खूबसूरत जगह पे पहुंच जाते हैं, फिर आप क्या कहते हैं, हाय अब ये खत्म हो जाएगा। शुरू होते ही उस ट्रिप के उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, एक दिन कम हो गया, हाय एक और रह, कुछ नहीं, आप अपने पाकिस्तान में चले जाए तो हर दिन कहेंगे एक दिन कम हो गया, एक दिन कम हो गया, गए ही सिर्फ 2 वीक के लिए थे, देखो उसमें से भी दो कम हो गए। जन्नत में जाने वाले खालिदीन फीहा, हमेशा खुल्द है वहां, इसी से लफ्ज खालिद भी है ना, हमेशा रहने वाला, हमेशा रहेंगे उसमें। फिर दूसरी मजे की बात के, ला यबगुना हाही वाला, नहीं चाहेंगे, ये जो यबगुन है ना, बगी चाहना, इब्तिगा मरदात अल्लाह का लफ्ज भी अभी बोला था पहले, चाहने की लफ्ज है, टू वॉन्ट, टू सीक, टू डिजायर, टू ऑर्डर, कुछ भी कह लें, वहां से उकताएंगे नहीं। क्या नहीं चाहेंगे, अनहा ही वाला, अनहा में हा क्या है, जन्नत, इसीलिए मानस है। ही वाला बदलना, ही वाला का लफ्ज हाल से, हा वाला बदलना, अरब लोग साल को भी हॉल कहते हैं, कहां गुजरा कुरान में, किसी को याद है, हाउ लेनी कामे लेन, दो पूरे साल दूध पिलाए माए अपने बच्चों को, ये जो लफ्ज हम कहते हैं ना माहौल, ये भी इसी से है, क्योंकि हालात, लफ्ज हालात भी इसी से ही है, चले आज लफ्ज हालात का रूप भी लिख के जाए, हाल ही है, हाल आमदानी हालत, हॉल क्योंकि ये बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, तो कहा कि ये कभी वहां से चेंज नहीं करना चाहेंगे। जन्नत ऐसी जगह नहीं है कि जहां रहते हुए जी उकता जाए, इंसान दुनिया में हर वक्त तब्दीली चाहता है, और आपको पता है कि एक तफरीह का मतलब क्या है, चेंज, एक लेक्चर दिया तो उसी में कई भी बातें याद आ गई कि हमारे यहाँ तफरीह क्या है, एंटरटेनमेंट चेंज का नाम है, शहरों वाले तफरीह के लिए जंगल में चले जाते हैं, देहातों वाले शहरों में आ जाते हैं, पाकिस्तान वाले अमेरिका में आते हैं, अमेरिका वाले पाकिस्तान जाते हैं, चेंज का नाम तफरी है। जन्नत के मामले में इंसान जगह ही नहीं बदलेगा, दुनिया की खूबी क्या, थोड़ी देर इधर दिल लगता है फिर बाद में खत्म, और मुस्तकिल अच्छी से अच्छी जगह पे रहना पड़ जाए तो बाद में मुश्किल पड़ती है। कभी आप बहुत अच्छे होटल में गए और वो भी खास तौर पर जहां नाश्ता भी इंक्लूडेड हो, सुबह उठते ही क्या है, जाके झांका झांकी करते हैं, वो ये भी है वो भी है, बड़े मजे से क्या खाऊं क्या ना खाऊं, फिर दूसरे दिन जरा सी सुस्ती होती है सुबह उठ के, हाँ अब 7 बजे उठ के कौन नीचे होटल में जाए, फिर जाते हैं, फिर 2 4 3 का तीसरे दिन फिर उसे होटल में जाए तो कहते क्या सेम वही चीजें होंगी, फिर घर की दाल रोटी याद आती है, यही है ना। जन्नत में अल्लाह कहते हैं ला यबगूना हाही वाला। तलाश ही नहीं करेंगे कुछ नहीं, अरस भर हुए जमीन क्या है, जन्नत, कश्मीर है। स्विट्जरलैंड को बाद लोग पैराडाइज कहते हैं, जरा जाके पूछिए तो सही, वहां के लोग, कितनी आफतें आती हैं, कितने फितने उनके ऊपर, लेकिन जन्नत में रहने वाले कभी वहां से उकताएंगे नहीं, एक दफा अल्लाह कदम तो अंदर रखा दे, चेंज नहीं करें। दुनिया में जब इंसान को मनपसंद चीज मिल जाती, कहता है बस अब इसको नहीं छोड़ना, अब इसको नहीं बदलना, यही जिंदगी का फलसफा है, शादी हो गई, मुतमईन है, अच्छा शौहर है, बस अब यहां रहेंगे, जो भी जिंदगी का हिस्सा होता है इंसान मुतमईन है, जॉब मर्दों को मिलती, कहते हैं लगता है कि ये ठीक जॉब है, इसी पे चलते रहेंगे, जन्नत को कोई चेंज नहीं करेगा। अब आखिरी दो आयतें हैं सूरत की, जो तौहीद के दो बड़े खजाने हैं, आयत 109 और 110, कुल लौ कान अल बहर मिदादल लिकलिमात रब्बी, ऐ नबी आप कहिए कि अगर समंदर स्याही बन जाए मेरे रब की कलिमात को लिखने के लिए, क्या होगा, लनफिद अल बहर कबल अन तनफद कलिमात रब्बी, तो यकीनन समंदर खत्म हो जाएगा इससे पहले कि मेरे रब के कलिमात खत्म हो, वलो जी ना भी मिसल ही मददा, और अगर चाहें तो और भी इनकी मदद को ले आए, समझ आई बात, कि जितने दुनिया के समंदर हैं, कितने समंदर हैं बाय द वे, 7 बिग ओशन है ना, सारे समंदरों का पानी क्या बन जाए, स्याही बन जाए। ये जो लफ्ज है ना मिदाद, ये स्याही की क्रिया है, रोशनाई क्यों होता है, थोड़ा सा इसके रूट को समझिएगा। मीम दाल, दाल इसका रूट है, मददा फैलाना, मुद्दत लफ्ज भी इसी से है। स्याही जब कागज पे रखी जाए तो क्या होती है, फैल जाती है, उसी से स्याही को अरबी जुबान में मदद कहते हैं, रोशनाई फैलती है, थोड़ी सी होती है मगर बहुत सारे सफों पे फैल जाती है। पहले दौर में लोग वो ईगल के पेन में इंक डालते थे, इतनी सी, एक पोर बराबर भी नहीं, और बीसियों सफे लिख लिए जाते थे। वही लफ्ज है, सूरह लुकमान आयत 27 में भी आएगा, वलौ अन्नमा फिल अर्ज़ि शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सब'अतु अबहुरिन मा नफिदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, के बेशक जो कुछ जमीन पर है दरख्तों में उसकी कलमें बन जाए, यानी पेंस बना लें दरख्तों की शाखों के, और समंदरों को स्याही बना लें, फिर सात समंदर और भी डाल लें। देखिए उस आयत में उस जमाने में बता दिया था कि सात समंदर है, हालांकि उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे। फरमाया मा नफिदत कलिमातुल्लाह, तेरे रब की बातें नहीं बदलती। ये लफ्ज कभी नफदा पीछे पड़ा आपने, माइंदकुम यनफुदु अभी रिसेंटली पढ़ा है आपने पिछले दो एक दो पारे में, कि जो अल्लाह के पास है वो खत्म नहीं होता, तुम्हारे पास है जो खत्म होता है। अब आप जरा इस आयत को समझिए कि अल्लाह के कलिमात से यहाँ क्या मुराद है। पहली बात तो ये कि इस सूरह आयत को पढ़ते हुए सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत को भी जहन में ले आए, क्योंकि मुसलसल इस सूरत में हम बनी इसराइल सूरह के साथ तकाबुल कर रहे हैं ना। आखिरी आयतें क्या थी, अविदुर्रहमान, कह दीजिए कि अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, अय्यम्मा तदउ जिससे भी तुम पुकारो, फलहुल अस्माउल हुस्ना उसके बेहतरीन नाम है, प्यारे नाम है। वहां अल्लाह के अस्मा का जिक्र था, यहां अल्लाह सुबहाना ताला की तारीफों को कलेमात कहा गया। हकीकत यह है कि अल्लाह सुबहाना ताला के कलेमात नहीं बदलते। अब इससे सवाल पैदा होता है कि लफ्ज़ कलेमा से क्या मुराद है, तो सबसे पहले तफसीर इसकी की गई मुफसरीन की तरफ से, कुरान। देखिए ना यहाँ कलेमात है ना, तो कुरान क्या है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, बल हुआ कलाम अल्लाह, तो कलाम वाहिद है, कलेमात उसकी जमा, तो अल्लाह के कलेमात से मुराद जहाँ कुरान है। तो पहली तफसीर क्या हुई कि कुरान जितनी बार पढ़े, जितनी मर्जी दफा पढ़े, आप इसके इल्म का इहाता ही नहीं कर सकते। बस दफा मैंने ये भी आजमाया पिछली जिंदगी में, कुछ सालों पहले वही आयतें सुबह पढ़ाती थी, वही आयतें शाम को पढ़ाती थी, ये रिकॉर्डिंग्स वाला चक्कर कम था। बिलीव मी कि सुबह को पढ़ाना जो स्टूडेंट्स के साथ उसमें, और शाम को डिफरेंट क्राउड के साथ पढ़ाना, जमीन आसमान का फर्क हो जाता था। मैं खुद कहती थी मैंने सुबह ये आयतें कैसे पढ़ाई हैं, ये बात सुबह मुझे क्यों नहीं समझ आई, पता चला कि जो सामने बैठे होते हैं उनके मुताबिक भी बातें समझ आ जाती हैं। ये लकी देना है, ये कैसा गहरा समंदर है कि ला युही तू नबी शही मिन इल्मी, आप इसके इल्म का इहाता ही नहीं कर सकते। दूसरा लफ्ज कलेमा से मुराद है अल्लाह के कलेमाए कुन, फइन्नमा अमरुहु इज़ा अराद शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। तो अल्लाह ने कलेमाए कुन से बनाया, यानी कुन कहकर इतना कुछ पैदा कर दिया जिसको शुमार नहीं कर सकते। आज तक चीजें डिस्कवर हो रही हैं, आज तक आप देखिए फूलों की किस्में, जानवरों की किस्में, और धातुओं की किस्में, और बहुत सारी चीजें आ गई, फूल, पत्तियां, तितलियां, मेंढक, मछलियां। एक रिपोर्ट थी यूके की कि जिसके खुलासे की बात ही बता देती हूँ कि 20,000 स्पीशीज हैं जानवरों की, यानी आज जितने जानवर हमें मिलते हैं ना, ये नहीं कि जानवर, उनकी अकसाम, जैसे मेंढक है ना तो फिर मेंढक की बहुत सी किस्में हैं, इसी तरह अगर तितलियां हैं तो वो कहते हैं कि 20,000 डिफरेंट स्पीशीज हैं जानवरों की, तो उसके अंदर फिर अलग और कितनी होंगी। एक फूल जिसका डायामीटर जो होता है वो 6 इंच है, चार तितलियां नहीं उनको डिस्कवर हुई, 19 मेंढक मिले। रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज दो नई मछलियां डिस्कवर होती हैं दुनिया में। जी आप कभी देखा करें डिस्कवरी चैनल, कभी आपने देखा, इसकी दो डीवीडी भी हैं, बहुत ही खूबसूरत, अमेजिंग। ऐसे लगता है जैसे छाज में डालकर कोई मछलियां डाल रहा है पानी में, इस तरह समुद्रों के अंदर चीजें, मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, मिलियंस ऑफ मिलियन किस्म की चीजें हैं जो इंतजार कर रही हैं कि इंसान हम तक पहुंचे और हमें डिस्कवर करें। सुभान अल्लाह, कुरान में आता है ला यालम जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा, तुम नहीं जानते तेरे रब के लश्कर किधर है उसको ही पता है, याजूज माजूज कितने हैं, हर 1,000 में से 999 आग में जाएंगे। हजरत आदम ये सुन के डर गए, का फिक्र नहीं करो याजूज माजूज भी इसी में ही है, यदि इतनी अल्लाह की मखलूकात है तो इंसान का फिर इल्म कितना थोड़ा है, फिर हम कहाँ अकड़े और कहाँ आलिम और कहाँ दीन की बात करें। तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे रब की बातें बहुत हैं, अब तुम्हारे रब की बातें खत्म नहीं होंगी, और अल्लाह के नामों पे ले लीजिए, तो 99 नेम्स हम शुरू से जानते थे, एक आखिरी जो चीज खबर तक 200 से जायद नाम है, हमारे एक उस्ताद थे हदीस के, तो उन्होंने हमें जब पढ़ाया तो उन्होंने बताया कि 200 नाम 200 नेम एंड एट्रीब्यूट्स डिस्कवर्ड हैं इस वक्त कुरान और हदीस के, और ये बात कम से कम भी 10 से 12 साल पुरानी है जो मैं अपने उस्ताद की बता रही हूँ आपको। अब तो कितनी उसके बाद रिसर्चेस हदीस की हो गई, और अब तो कंप्यूटर में हदीसें चली गई, तो अब कितने और नाम नहीं डिस्कवर हुए। तो उलमा कहते हैं कि अल्लाह के नाम जो ना ये भी अब नए नए नाम डिस्कवर हो रहे हैं, जितनी दुनिया में डिस्कवरीज इन्वेंशंस के नाम पे हो रही हैं उतने अल्लाह ताला के रंग रूप भी दिख रहे हैं। उसका कलाम आप और मैं पढ़ रहे हैं, ये उसकी किताब है, प्यार से इसको छुए। और आखिरी आयत कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी आप इनसे कह दीजिए मैं तो बस तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, फर्क कितना है मुझ में और तुम में, यूहा इलैया, बस वही का फर्क है, मेरी तरह वही की जाती है, और उस वही का पैगाम क्या है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, के नहीं है कोई इलाह मगर एक ही, लिहाजा फमन कान यरजू लिका रब्बी, बस जो कोई भी उम्मीद रखता वो अपने रब से मुलाकात की, रखते हैं आप और मैं रखते हैं, तो क्या करें, फलयामल सालेहन, फिर चाहिए कि नेक अमल करें, वला युशरिक बी इबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करें। क्या मतलब इसका, इखलासे नियत। इस वक्त मैं और आप दुनिया का सबसे ज्यादा नोबल काम कर रहे हैं, आपको पता है, क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू, बुखारी की रिवायत है, तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरआन पढ़ते और पढ़ाते और उस पर खर्च करते, तो बेहतरीन तो हो गए ना, इसके बावजूद हमारा ये अमल इस वक्त हमें जहन्नुम में डालने के लिए काफी है, अगर इखलास नियत ना हुआ। ये इतनी बड़ी दौलत है, हर बंदा अपनी नियत को चेक करे सूरत के आखिर में कि किस तरह से हम यहां क्या करके आते हैं, क्या ये सारे हालात हैं। तो गोया के अल्लाह ताला ने इसमें वही पैगाम दे दिया जो कि सूरत बनी इसराइल में भी दे दिया था, वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदं वलम यकुल लहू शरीकुम फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलीयुम मिनज़ ज़िल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। वहां क्या थी आयत 111, यहां क्या है 110, मजमून दोनों का एक है, बड़ाई उसकी शुक्र उसका शान उसकी, शिर्क की तो कोई गुंजाइश नहीं है, कहां एक कमजोर इंसान को उसी के बराबर खड़ा कर देना। और आपको पता है कि शिर्क बनी इसराइल की आखिरी आयत में अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करने का हुक्म करके शिर्क की पहली सूरत को बातिल किया गया, और यहां सूरत कहफ की आखिरी आयत में शिर्क की दूसरी सूरत यानी मखलूकात में से किसी को अल्लाह के बराबर करने की नफी की गई। हर दौर में रहा, कभी ईसा को बनाया गया, कभी फरिश्तों को बनाया गया, और आज नऊज बिल्ला मुसलमानों ने कह दिया वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर, नऊज बिल्ला ही मिन ज़ालिक। हजरत अली के बारे में लोगों ने कहा कि हर चंद अली की जात नहीं है खुदा की जात, यानी मैं नहीं कहता कि अली जो थे वो खुदा की जात थे, लेकिन नहीं है जाते खुदा जुदा अली से, कुछ इस किस्म का शेर भी है कि अली खुदा से जुदा भी नहीं, और इसको आज हलूल कहते हैं, हर मजहब का यही ख्याल है कि उसके अंदर रब रहता है। अल्लाह अकबर, एक मिर्जा गालिब का शेर भी इस पे फिट आता है, कहते हैं कि गालिब नदी में दोस्त से आती है बोए दोस्त, कि इंसान बाज किसी के बैठता है तो उसको उसके दोस्त की खुशबू आती है। जैसे मिसाल है कि मैं फायजा को मिलूंगी तो मैं फौरन कहूंगी सोगिया किधर है, कुछ लोगों के नाम जुड़ जाते हैं ना आपस में जो हमेशा होते हैं, तो कहते हैं कि गालिब नदी में दोस्त से आती है बोए दोस्त, मशगूले हक हूं बंदगी जो तुर आपने, यानी बंदगी के साथ जो मट्टी, यानी जो इंसान को भी इस हद तक कह लीजिए, अबू तुराब असल में हजरत अली के, यानी कहते हैं कि जब मैं अबू तुराब की बंदगी करता हूँ यानी हजरत अली को बड़ा करता हूँ तो दर हकीकत में अल्लाह ही की बंदगी करता हूँ। इसी तरह आपको पता है कि हर मजहब के अंदर अवतार, दशम उसका रूप, कृष्णा उसके अंदर है, नौ अवतार तो क्रिश्चियंस के थे, आज अफसोस की बात है कि मुसलमानों ने उसमें दसवां हजरत अली को भी डाल दिया। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी आंखें खोल दे। ये थी सूरत कहफ, हर जुमे को पढ़ते हैं और इसके अंदर से हमें अमल की बहुत सारी बातें मिलती हैं। रमजान में आपको एक लिंक दिखाया गया था, मैं इशारतन अभी हल खोल देती हूँ सामने आपके पास, इसके लिंक पे भी हम डाल देंगे कि किस तरह से सूरत काहफ मुख्तलिफ दौर के फितनों का जरिया है। कुछ बातें इधर हम देख लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह आप लोग उसी ऑडियो में से इधर। आप देखिए कि पूरी सूरत को अगर आप देखें तो इसमें इंसान को आने वाले दौर के मुख्तलिफ फितनों से आगाह किया गया। हमारा सवाल क्या था कि फितना दज्जाल के मुकाबले में इसको क्यों पढ़े, तो उसकी वजह यह है कि सूरत काहफ में हमने चार स्टोरीज पढ़ी, गार वालों का किस्सा, बाघ वालों का किस्सा, मूसा और खिजर का किस्सा और जुलकरनैन का किस्सा। गार वालों का फितना क्या था, मजहब का फितना, कि जब लोग इस्लाम के ऊपर आने की वजह से आपके पीछे पड़े तो आप गार में छुप जाएं। बाघ वाले का किस्सा था दौलत और बच्चों का फितना, कि दौलत की वजह से वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने लग गया। फिर उसके बाद मूसा और खिजर में इल्म का फितना था, कि इल्म वाले किन फितनों में आ जाते हैं, और जुलकरनैन में अथॉरिटी यानी हुकूमत का खत फितना था, किस तरह से जब हुकूमत मिलती है तो इंसान दूसरों के पीछे आ जाता है। करें क्या, आप देखिए कि इसका इलाज अल्लाह ने इसी सूरत के बीच में दे दिया कि उन लोगों के साथ रहो जो अल्लाह को दिन रात पुकारते हैं। ये एक बोट ऑफ सक्सेस बनी हुई है, पांच छह चीजें हैं, ह्यूमैलिटी, आजजी, सिंसेरिटी, इखलास और रिमेम्बरेंस ऑफ द हेराफ्टर, आखरत को याद रखना, और नोइंग द रियलिटी ऑफ लाइफ, दुनिया की जिंदगी को जान लेंगे, अच्छी दोस्ती होगी तो आप दीन पे स्टैंड ले सकेंगे, और कॉलिंग टू अल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाएंगे लोगों को फायदा होगा। अगर आप ये बात में जब देखेंगे ना तो समझ जाएगा, ये एरोज हैं, ये जो दो एरोज है ना ये साहबे कहफ के हैं, कि अच्छी दोस्ती ने उनको दीन पे जमाए रखा और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। बाघ वाले के किस्से के अंदर क्या चीज काम आई, दुनिया की हकीकत उसको पता समझ आ गई कि दुनिया कुछ नहीं है। मूसा और खिजर के किस्से में मैं आजजी दिखी, हम्बलनेस, तो दीन कभी कोई इल्म की वजह से फितने का शिकार हो तो अपने अंदर आजजी ले आए, और हुक्मरान अच्छे कब होंगे, जब इखलास होगा, सिंसेरिटी होगी और अल्लाह की याद को रखने वाला हुक्मरान होगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि दज्जाल के फितने में और सूरत काहफ के बीच में क्या तकाबुल है, तो आप देखिए दज्जाल जब दुनिया में आएगा तो ये चारों ही फितने होंगे। वो लोगों से कहेगा मेरी इबादत करो, ये लोगों के दीन का फितना होगा। आसमान से दौलत बरसाएगा, बारिशें होंगी, यानी बहुत माल होगा उसके पास, ये दौलत का फितना होगा। फिर लोगों को अपने इल्म की बुनियाद पे साबित कराएगा, खबरें देगा कौन मर गया, किधर है, जन्नत में, जहन्नुम में, तो ये इल्म का फितना होगा, और पूरी दुनिया का कंट्रोल उसके हाथ में होगा, ये अथॉरिटी का फितना होगा। इन चारों फितनों से अपने आप को बचाना है तो ये आपके मेरे लिए बोट ऑफ सक्सेस है। अच्छी दोस्तियां कायम करें, दुनिया की हकीकत को समझें, अपने अंदर आजजी लेकर आएं, सिंसेरिटी हो, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारी चीजें जो हैं हमारे लिए समझनी माननी आसान होगी। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि इसको बेहतर रखें। मैंने पिछले साल यानी यही जो सबीलुल जन्ना था उसके एंड पे पूरी सूरत का खुलासा दिया था, अगर आप लोग उसको इसी में ऐड कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा, और आप लोग सुनना चाहें तो वेबसाइट से जाके, अगर आपका दिल चाहे तो आप सुन सकते हैं। ठीक है, दुआ करते हैं कि अब इसके बाद जब हम कब पढ़ेंगे ये सूरत, कल पढ़ेंगे ना, कल पढ़ेंगे, तो कल की सूरत जो है वो पिछले जुमे की सूरत से बहुत फर्क होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम इसका जो हक नहीं अदा कर सके उसकी तौफीक दे हमें, नेक्स्ट टाइम जब इसको पढ़े। जो बात जाए उस पर अमल करें, और हर जुमे को ये मजमून हमें समझ आ जाए कि दुनिया कुछ नहीं है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ब्रेक का टाइम है, आप लोग ब्रेक लीजिए 20 मिनट की, जल्दी से वापस आ जाए, इसके बाद हमारा एक स्पेशल सेशन होगा इंशाल्लाह ताला। इशरत, ये आप इरम का खाना मेरे पास क्यों ले आए? जी का खाना है, उसको देखें क्या आपको? नहीं, मैंने ले लिया था, उसको बता देना मैंने इसमें से कुछ लिया था।